दिन भर 17 अप्रैल दिन रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। इक्वाडोर में शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 77 लोगों की मौत।
I never feel something like that in my life, never, because Ecuador is not common. It was so strong, I was feeling very, very scared.
गुजरात में आरक्षण की मांग पर पटेल समुदाय का उग्र प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में दूसरे दौर का मतदान संपन्न। संडे दिन भर में मिलिए शाहरुख खान से।
आई थिंक फैन का प्यार अनकंडीशनल होता है कि आप जो भी करेंगे मैं आपको प्यार करूंगा, कि आप अगर अच्छा भी करोगे तो अच्छा है, बुरा करोगे तो मैं आपको डिफेंड करूंगा।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। शक्तिशाली भूकंप से प्रभावित इक्वाडोर के उत्तरी तटीय इलाके में राहत कार्य के लिए हजारों सैनिकों को लगाया गया है। कल रात आए भयंकर भूकंप में अब तक 77 लोगों की मौत की खबर है। हेलीकॉप्टरों और बसों को राहत कार्य में लगाया गया है। भूकंप के केंद्र पेदरनेलेस शहर के मेयर ने कहा कि भूकंप से पूरा शहर जमींदोज हो गया है। रोम की यात्रा पर गए राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने कहा है कि भूकंप से हुए नुकसान से उबरने के लिए सरकार करीब 60 करोड़ डॉलर उपलब्ध कराएगी। उधर जापान के क्यूशू द्वीप में कुमामोटो शहर में पिछले गुरुवार और शुक्रवार में को आए भूकंप से प्रभावित लोगों के पास पीने के पानी और बिजली नहीं पहुंच रही है। अमरीका ने जापान में भूकंप से प्रभावित लाखों लोगों की मदद के लिए विमान भेजे हैं। भूकंप से 94 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य की टीमें अब भी मलबे से लोगों को ढूंढने में लगी हैं। कतर में तेल उत्पादक देशों की बैठक में तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश ईरान ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। इस बैठक का मकसद तेल उत्पादन को रोककर इसके उत्पादन मूल्यों को बढ़ावा देना है। ईरान के तेल मंत्री बीजान जानगने ने कहा कि तेहरान तेल उत्पादन को रोकने का मतलब ये समझता है कि ईरान को इससे प्रतिबंध हटाए जाने के बाद बाजार में वापसी का कोई फायदा नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा,
दोहा
बैठक उनके लिए है जो तेल का उत्पादन बंद करना चाहते हैं। अगर हम किसी को भेजते तो ये लगता कि हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं। हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे, इसलिए हमने जाना जरूरी नहीं समझा। हम दोहा में जो फैसला होगा उसका समर्थन करेंगे और उन लोगों को शुभकामनाएं देंगे। ये थे बीजान जानगने के शब्द। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 2 साल से लगभग आधी हो गई है और इससे तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। गुजरात में पटेलों के आरक्षण के लिए चल रहा पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज पटेल समुदाय ने राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था, जिसमें सूरत और महसाणा से हिंसा की खबरें हैं। महसाणा में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है और अहमदाबाद दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी के बौछारों का इस्तेमाल किया है। ब्राजील में आज राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ के खिलाफ महाभियोग पर संसद के निचले सदन में वोटिंग होनी है। इसके मद्देनजर विरोध प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए कई शहरों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ पर विपक्ष ने सरकारी घाटे को छिपाने का आरोप लगाया है। रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी ब्रासिलिया में राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ ने आखिरी कोशिश के तौर पर सांसदों से बातचीत कर समर्थन जुटाने की कोशिश की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की तीसरी सभा दिन भर में सभी श्रोताओं का अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं लाइव। भारत के ज्यादातर राज्यों में पारा चढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। गुजरात में गर्मी के साथ आरक्षण की आग भी भड़क रही है। पटेल समुदाय के लोग आरक्षण और अपने नेता हार्दिक पटेल की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे हैं, इस खबर पर आएंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। आपने गौर किया होगा कि बीते कुछ दिनों से भूकंप की खबरें लगातार आ रही हैं। भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, जापान और इस कड़ी में आज नाम जुड़ गया है इक्वाडोर का। इक्वाडोर में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसकी वजह से कम 77 लोग मारे गए हैं, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, मृतकों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए अमर शर्मा से।
इक्वाडोर में शनिवार को स्थानीय समय अनुसार शाम 6:58 पर एक जलजला आया जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए हैं। इक्वाडोर में साल 1979 के बाद ये सबसे जोरदार भूकंप है। अमरीकी भूवैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्व में समुद्री तटीय शहर मुइजने के नजदीक था और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 मापी गई। भूकंप के सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों में से एक बोयाको की निवासी कार्ला पेराल्टो ने बीबीसी को बताया,
मैंने
अपनी जिंदगी में ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था। ये बहुत जबरदस्त था। मैं बहुत बहुत ज्यादा डर गई थी। अचानक अंधेरा हो गया, बिजली गुल हो गई थी, जैसे सिनेमा घर में होता है। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि भगवान ये सब बंद करो, क्योंकि आज शायद मैं मर जाऊंगी।
कार्ला पेराल्टो के शब्द। अधिकारियों के मुताबिक बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें मिल रही हैं। तस्वीरों में बड़ी बड़ी इमारतें गिरी हुई दिख रही हैं। राहत कर्मी लोगों को मलबे से निकाल रहे हैं। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक इलाके में कई घरों की छतें टूट गई हैं। साथ ही भूकंप के केंद्र के 300 किलोमीटर दूर दक्षिण शहर गोयाकिल में एक पुल गिर गया है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भूकंप कितना भयानक था। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने यह भी कहा है कि फिलहाल सुनामी का खतरा नहीं है। हालांकि इससे पहले कुछ तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई थी। राष्ट्रपति रफाइल कोरेया अपनी इटली की यात्रा को बीच में ही छोड़कर इक्वाडोर लौट आए हैं। रोम से वापस लौटने से पहले इक्वाडोर टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा,
ये एक बहुत ही तकलीफ देह इम्तिहान है, लेकिन हम इसे जीत लेंगे। पुल, सड़कें, अस्पताल, हर चीज को दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन जो जिंदगियां खत्म हो गई हैं, उन्हें दोबारा नहीं पाया जा सकता।
रफाइल कोरेया के शब्द। भूकंप के केंद्र के नजदीक स्थित शहर पेड्रनाले के मेयर गैब्रियल एलसीवर ने कहा कि हम अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि कुछ लोग आपदा की इस घड़ी में भी लूटपाट कर रहे हैं। इस बीच 6 प्रांतों में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है और बचाव कार्य में नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया गया है। व्यवस्था बिगड़ने की खबरों के बाद प्रभावित इलाकों में करीब 10,000 सैनिक और 3,500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।
इक्वाडोर में शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 77 लोगों की मौत। रिपोर्ट सुना रहे थे अमर शर्मा। अगले कार्यक्रम घटना चक्र में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या वजह है कि एक के बाद एक लगातार भूकंप आ रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन फिलहाल कुछ और बातें जानते हैं इक्वाडोर के बारे में।
इक्वाडोर एक दक्षिण अमरीकी देश है जिसके एक ओर कोलंबिया और दूसरी ओर पेरू है। इक्वाडोर का एक बड़ा हिस्सा प्रशांत महासागर के किनारे बसा है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इक्वाडोर केला निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है और 1960 के दशक तक इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती किसानी पर निर्भर थी।
19वीं सदी में स्पेन से आज़ादी हासिल करने के बाद इक्वाडोर 60 के दशक में तेजी से बदला। तेल की खोज और औद्योगिकीकरण ने इस देश की तस्वीर काफी हद तक बदल दी है।
लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आबादी का अधिकतर हिस्सा ईसाई धर्म को मानने वाला है और स्पेनिश यहाँ की मुख्य भाषा है।
इक्वाडोर प्रशांत महासागर के उस दायरे में आता है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, जहाँ भूगर्भीय हलचल दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक होती है।
इक्वाडोर में बीते 100 वर्षों में 7 बार ऐसे भूकंप आ चुके हैं जिनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक मापी गई थी।
ऐसे ही कुछ भूकंप की वजह से इक्वाडोर में इससे पहले भी जानमाल का काफी नुकसान हुआ। भूगर्भीय हलचल की वजह से ये देश भूकंप की तरह पहले भी सुनामी का प्रकोप झेल चुका है।
भूकंप से जूझता रहा है इक्वाडोर, बता रही थी हरिता कांडपाल और अजय शर्मा।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर का मतदान संपन्न हो गया है। इस खबर पर आने से पहले बात गुजरात की, जहां आरक्षण की मांग कर रहे पटेल समुदाय के लोग आज कुछ जगहों पर कुछ शहरों में उग्र हो गए। उत्तरी गुजरात के शहर महसाणा में प्रदर्शनकारी हिंसक हुए, जिसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अहमदाबाद से अंकुर जैन की रिपोर्ट।
गुजरात में पटेलों के आरक्षण के लिए चल रहा पाटीदार अनामत आंदोलन फिर से हिंसक हो गया है। पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी के खिलाफ पटेल समुदाय ने रविवार को राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था। हार्दिक पटेल को पिछले साल अक्टूबर में राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। महसाना, सूरत, भावनगर और दूसरे शहरों में बड़ी तादाद में जमा हुए पटेल समुदाय के लोगों ने जिले की जेल की तरफ कूच किया। मेहसाणा, जो पाटीदारों का गुजरात में गढ़ माना जाता है, वहां जेल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे पटेल समुदाय के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी और वहां मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई और इलाके में कर्फ्यू लाद दिया गया। इस बारे में मेहसाणा के कलेक्टर लोचन सेहरा ने हमें बताया
की तरफ से विजय गुरु आंदोलन का उन्होंने 17 को आज अनाउंस किया था और जेल को ब्रेक करने के लिए जेल की तरफ स्टैंड किया तो पुलिस ने रोका, तो पुलिस के ऊपर इन्होंने स्ट्रॉन्ग फ्लैशिंग किया, तो मॉब को डिस्पर्स करने के लिए पुलिस ने टियर गैस छोड़े, तो इन्होंने और दोबारा स्ट्रॉन्ग फ्लैशिंग किया, उसमें मामलेदार इंजर्ड हुए हैं, एसडीएम की गाड़ी इंजर्ड हुई है। इसके बाद उन्होंने जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है मॉडेरा रोड पे, एचके का गोडाउन एंड ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी सेंटर, उनको भी जलाया है और स्थिति को देखते हुए 144 हमने इम्पोज किया सीएफसी और अभी सिचुएशन पूरे कंट्रोल में।
वही मेहसाणा के बाद गुजरात के सूरत, राजकोट और अहमदाबाद में पाटीदार समाज के लोगों ने पुलिस की गाड़ी और सरकारी संपत्ति को तोड़ने की कोशिश की। पाटीदार समाज ने रविवार के पुलिस लाठीचार्ज के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लाठीचार्ज में पाटीदार नेता लालजी पटेल भी जख्मी हुए, वे हार्दिक के बाद इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता हैं। हरिकेश पटेल, जो हार्दिक पटेल के सहयोगी हैं और पाटीदार नेता हैं, उन्होंने हमें बताया,
अभी तो सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है कि ये लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था और क्यों दिया था, लेकिन आने वाले दिनों में हमारी एक ही मांग रहेगी कि ये जो पुलिस दमन पहले भी हो चुका है और आज भी हुआ है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए और हार्दिक पटेल को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और हार्दिक पटेल के साथ ही ये अनामत के आंदोलन के समाधान के लिए चर्चा विचारणा की जाए और पूरे गुजरात में शांति स्थापन की जाए।
पिछले साल पटेल समुदाय ने आरक्षण के लिए आंदोलन चलाया था जो हिंसक हो गया। इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई थी जिसमें 11 से अधिक लोगों की मौत हुई। यहीं आज हिंसा के बाद पाटीदार समाज ने सोमवार को गुजरात बंद का ऐलान किया है। सरकार ने मेहसाणा समेत अहमदाबाद और सूरत जैसे गुजरात के बड़े शहरों में मोबाइल इंटरनेट पर अब रोक लगा दी है। अंकुर जैन, बीबीसी हिंदी, अहमदाबाद।
अंकुर जैन टेलीफोन लाइन के जरिए एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अंकुर, आप हमें सुन पा रहे हैं? अंकुर, गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई हैं। आज पाटीदार समुदाय ने आरक्षण की मांग के साथ दोबारा प्रदर्शन किया है, तो क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री आनंदी बेन की मुश्किलें, परेशानियां कानून व्यवस्था के मामले में और बढ़ने वाली हैं?
बिल्कुल, पिछले साल जब पाटीदार आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद हिंसा हुई थी, उसको लेकर राज्य में कई जगहों पर और देश में भी आनंदीबेन पटेल सरकार की निंदा की गई थी कि पुलिस ने बल प्रयोग किया है और आंदोलन खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद आनंदीबेन की सरकार पर यह आरोप था कि आनंदीबेन ने अपनी पुत्री के बिजनेस पार्टनर्स को, अपनी बेटी के बिजनेस पार्टनर्स को कम रेट्स में लैंड दिया है और उसके बाद अभी आंदोलन वापस, तो आनंदीबेन पटेल की सरकार के लिए चिंताएं बिल्कुल बढ़ चुकी है और ये मानते हैं कि 2017 के गुजरात चुनाव में आनंदीबेन के अगुवाई में बीजेपी के लिए जीतना शायद मुश्किल हो सकता है।
अंकुर, ये बताएं कि पाटीदार समुदाय किस श्रेणी, किस वर्ग में आरक्षण की मांग कर रहा है?
बिल्कुल, ये जो डिस्कशन का मुद्दा है, ये जब से आंदोलन शुरू हुआ है ये गुजरात के विभिन्न वर्गों में ये मुद्दा है कि पाटीदार जो समाज है, जो गुजरात में 12-15% पॉपुलेशन पाटीदार की है, जो पटेल है यहाँ पर, और ये माना जाता था कि मोदी, नरेंद्र मोदी की सरकार में जो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज थे गुजरात डेवलपमेंट के, वो पटेल थे और अब उनकी लेकर ये मांग की, वो ये चर्चा मांग रहे हैं कि उनका वो जो अध्यक्ष कास्ट है जिसमें ठाकुर और गुजरात की दूसरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज आती है, उनका दर्जा उनको प्राप्त हो, तो ये काफी लोगों को सरप्राइज करता है कि क्यों पाटीदार जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी माना जा रहा था अब वो आरक्षण की मांग कर रहा है।
अंकुर, पाटीदार समुदाय को गुजरात में वैसे तो संपन्न वर्ग के तौर पे देखा जाता है, क्या आरक्षण की उनकी मांग को गुजरात में समर्थन मिल रहा है या बाकी समुदाय के जो लोग हैं, बाकी समुदाय जो हैं, वो इस मांग का विरोध करते हैं?
नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि बाकी समुदाय इस मांग का विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि पाटीदार जो कम्युनिटी है वो संपन्न है, लेकिन इसमें पिछले कुछ सालों में जो सूखा पड़ा है उसकी वजह से पाटीदार समाज के जो किसान, जो खासकर के जो किसान वर्ग है, उसको बहुत बड़ी भारी चोट लगी है और वो इस पूरे मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बाकी समुदाय में इसमें कोई कंसेंसस नहीं है कि पाटीदार समाज को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, इसको लेकर भारी विरोध आज भी है गुजरात में।
बहुत शुक्रिया, ये थे अहमदाबाद से हमारे सहयोगी अंकुर जैन और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 56 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। कुछ जगहों पर अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने की खबरें हैं। बीरभूम और मालदा में झड़पें हुई हैं। कोलकाता से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सलमान, आप हमें सुन पा रहे हैं?
बिल्कुल मैं सुन पा
रहा हूं। तो सलमान साहब, ये बताएं कि पश्चिम बंगाल में आज जो 56 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है, तो कुछ खबर पता चला आधिकारिक तौर पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है?
देखिए, चूंकि मतदान 6 बजे तक चला, इसलिए अभी तक आकलन किया जा रहा है कि कितना प्रतिशत है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 75 से लेकर 80% तक हो सकता है कि मतदान हुआ हो, क्योंकि उत्तर बंगाल में काफी अच्छी पोलिंग हुई है और ज्यादातर सीटें उत्तर बंगाल की ही हैं इस चरण में, और खाली एक जिला है जो दक्षिण बंगाल का है, वो है बीरभूम जिला, जिसकी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो चूंकि नॉर्थ बंगाल में अच्छी पोलिंग हुई है, इसलिए ये माना जा रहा है कि पोलिंग का परसेंटेज काफी ऊपर जाएगा।
आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंची कुछ शिकायतें लेकर। क्या शिकायतें थी इनकी?
जो दिन भर जो हुआ है चुनाव, जैसे ही शुरू हुआ सुबह 7 बजे, उसके बाद से झड़पों की खबरें आने लगी कई जगहों पर, जैसे खासतौर पर जो बीरभूम का इलाका है, सबसे ज्यादा जो घटनाएं हैं वहीं पर हुई हैं, जिसमें कहीं पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के लोगों के बीच झड़प हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। इसमें दोनों तरफ से पुलिस ने कहा है कि उन्होंने गिरफ्तारियां की हैं, लगभग 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और उसी तरह से बोलपुर के आसपास काफी झड़प हुई है, लेकिन किसी के घायल होने की खबर। लेकिन ये बंगाल की राजनीति का एक हिस्सा है, चुनाव के दौरान में इस तरह की वारदातें होती हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना जबरदस्त कंटेस्ट है इस बार इलेक्शन में।
और चलते चलते ये बताएं कि आज जिन जिलों में मतदान हुआ है, उनमें प्रमुख सीटें कौन कौन सी हैं?
जी, सबकी नजर ज्यादातर तो दार्जिलिंग पर है, नॉर्थ बंगाल की जो सीट है, और उसके साथ साथ मालदा पर भी है, लेकिन ये जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बीरभूम की, जो नक्सल प्रभावित इलाका बताया जाता है, जहां 4 बजे तक पोलिंग हुई है, इन पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन ज्यादा जो शाक पर लगी है इज्जत, वो है बिमल गुरुंग की, जो अलग हो गए हैं तृणमूल कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी के साथ, वहां पर उनकी पार्टी लड़ रही है पहाड़ों पर, और उसी तरह से जो बैचुंग भुटिया हैं फुटबॉलर, वो सिलीगुड़ी से लड़ रहे हैं, तो पूरा फोकस जो है नॉर्थ बंगाल की सीटों पर ज्यादा है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में दूसरे दौर का मतदान संपन्न। ये थे कोलकाता से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। एक तरफ आईपीएल मैचों के लिए पानी से तरबतर मैदान, दूसरी तरफ पानी के लिए तरसते गांव देहात।
कहाँ आवत है पानी, मरती है गोरु बछेरु मराई सबको भैया हरा कहे का।
सूखी जमीन, पथराई आंखों में बच्चों के बिखरते सपने।
हमारे सबसे बच्चे जाते होंगे स्कूल, बहुत कम जाते हैं और ज्यादा पानी में, और घर के काम दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें माफ चलेगा दिल्ली, क्योंकि यहाँ कुछ खाने के लिए है नहीं, सरकार कुछ कर नहीं रही है मदद।
पानी नहीं बचा, बचे रहे तजुर्बे।
पहले जो है तो लोग पानी का रख रखाव करते थे, बनिया डालते थे, अब आज बरसाती पानी कोई रोक नहीं पा रहा,
और अब चारों तरफ सूखा ही सूखा।
आसों की साल में कई आदमी ने बलकट के लाने खेती लई, अब भाव ना कुछ तो सवेरे से चिल्लाता कही कि हम तो आत्महत्या कर ले।
सूखा भारत, सोमवार 18 अप्रैल से शाम 7:30 बजे दिन भर में, पुनः प्रसारण अगली सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। सूखा भारत, 17 अप्रैल का दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, रेडियो पर, bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। और अब वक्त हो चला है संडे दिन भर का। संडे दिन भर में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं शाहरुख खान से।
नमस्कार, संडे दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ विदित। आज हमारे साथ हैं इस हफ्ते रिलीज फिल्म फैन के अभिनेता शाहरुख खान। शाहरुख खान इस फिल्म में डबल रोल निभा रहे हैं, पहला है आर्यन का और दूसरा है आर्यन के ही ऑब्सेस्ड फैन गौरव का। तो आइए उनसे ये बातचीत शुरू करते हैं। शाहरुख, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीबीसी एक मुलाकात में। आपकी ये जो फिल्म है फैन, उसमें कनेक्शन से ज्यादा ना ये एक ऑब्सेशन सा दिख रहा है आपके फैन में, क्या फैन की ऐसी ही डेफिनेशन सोची थी आपने या फिर ये डेलिबरेटली किया है?
एक्चुअली जो फैन की परिभाषा हमने सोच के रखी है वो ऐसा है कि किसी को बे इंतहा प्यार करो, मतलब जरूरी नहीं उसी को जो दूर है, इस केस में दूर है, लेकिन एक्चुअली फैन इज अ डेरिवेटिव ऑफ फैनेटिक, तो बिकॉज वैसा है तो कभी कभी साउंड करता है ऑब्सेसिव होगा, लेकिन मुझे लगता है दूर से प्यार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि बाकी प्यार में कंडीशन हो जाता है बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, माँ बाप के साथ, कि देखो हम जैसे फैमिली में होता है तुम ना हमेशा ऑफिस पहुँचते ही लंच में मुझसे बात करके खाना खाया करो, सो कंडीशंस बहुत होती हैं। बट आई थिंक फैन का प्यार अनकंडीशनल होता है कि आप जो भी करेंगे मैं आपको प्यार करूंगा, कि आप अगर अच्छा भी करोगे तो अच्छा है, बुरा करोगे तो मैं आपको डिफेंड करूंगा। सो ऑब्सेशन नहीं है, आई थिंक अनकंडीशनल है, और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कभी कभी कोई नॉर्मल प्यार भी ऐसा लगने लग सकता है कि यार ये बड़ा ऑब्सेस्ड है इसके साथ।
और ये वैसे डुप्लीकेट लग रहा है आपका इस फिल्म में, मतलब उसके नैन नक्श आप जैसे लग रहे हैं थोड़े बहुत, तो क्या कहानी ऐसी ही थी या फिर ये क्लोज रिजेम्बलेंस दिखाना चाह रहे थे आप?
पहले जब हमने फिल्म सोचा ना तो आइडिया ये था कि डबल रोल नहीं लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए दो अलग किरदार है। फिर मेरे साथ मनीष फिल्म बनाना चाह रहे थे, और आई थिंक उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर आप रियल जोन में पिक्चर बनाएं तो ऐसा कोई एक्टर चाहिए जो 20-25 साल से काम कर रहा है, बॉडी ऑफ वर्क यू नो कि आर्काइवल फुटेज जो है, अगर हम किसी नए के साथ बनाएं बन सकती है, लेकिन देन यू हैव टू शूट ऑल दैट एंड कन्विंस पीपल कि ऐसा स्टार था। अभी क्या एक जर्नी है मेरी खुद की 20-25 साल की, मनीष ऑब्वियसली बीइंग फ्रॉम दिल्ली वांटेड टू मेक द फिल्म विद मी, द अदर कैरेक्टर वी डिडंट वांट हिम टू लुक लाइक शाहरुख और आर्यन खन्ना, बट ही शुड बिलीव कि उसमें कोई झलक है शाहरुख की, तो हमने बाल मोर लेस वैसे ही रखे। बाकी आई थिंक मोस्ट ऑफ द फेस इज चेंज, लेकिन फिल्म में कभी कभी ऐसा लगेगा है नहीं है, और वो बहुत नेसेसरी है फिल्म की स्टोरी में। और मैं जब किसी लुक लाइक को देखता हूँ तो मुझे तो लगता है मैं ही ज्यादा हैंडसम।
पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें दो शाहरुख खान है, एक यंग और एक आर्यन, तो आपको दोनों में से कौन सा प्ले करना ज्यादा अच्छा लगा, गौरव या आर्यन?
फॉर मी आई थिंक प्लेइंग यंगर इज इजियर, बिकॉज नॉट फॉर एनी अदर रीजन कि मैं यंग एट हार्ट ही हूँ या कुछ, but I think my physicality from beginning I'm boy like, I'm not man.
नहीं नहीं ऐसा नहीं है शाहरुख, अगर आप भी डोले शोले बना लें then you'll also look like an alpha male.
मतलब मैं alpha male लगता ही नहीं हूँ, मैं कितने भी मसल बना लूँ कुछ भी बना लूँ तो मैं बॉय लाइक हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा वेट लूज़ किया, फिर बॉडी लैंग्वेज थोड़ा बदला, चाल बाल बदली, तो दैट इज़ ईजियर कंपेयर टू जब मैंने ओल्ड प्ले किया जैसे वीर ज़ारा, वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि बैठ के वैसा कि आओ बेटी और कैदी नंबर 786, मुझे थोड़ा अजीब लगता है वो।
शाहरुख, ये जो आपकी फिल्म है फैन, उसमें जो आपका फैन होता है गौरव, वो आर्यन खन्ना का बहुत बड़ा फैन होता है, उसके पीछे बहुत पागल होता है, तो क्या आप कभी अपने इतने ऑब्सेसिव और पागल फैन से मिले हैं जो कि बिल्कुल गौरव जैसा हो?
नहीं, मैं एक्चुअली ज़्यादातर लोगों से मिलता ही नहीं, मुझे मालूम नहीं है, बट आई एम श्योर कहीं पे लोग होंगे जो बहुत प्यार करते हैं। मेरे एक लड़की हैं शायद अमेरिका में, उन्होंने मुझे मून पे कोई ज़मीन खरीद के दे रखी है, एक हैं आई थिंक ट्विटर पे भी हैं लिंडी, वो मेरी स्केचेस बनाती हैं बहुत सुंदर, बट ऐसा कोई स्केरी, मतलब ये भी स्केरी नहीं है एक्चुअली, 24-25 साल की उम्र में जैसे लड़के सोचते कम हैं कर देते हैं, यू नो एक एज होती है, जब मैं भी यंग था तो जैसे मैंने खुद डर कर ली थी या बाजी करी अंजाम, तो लोग कहते अरे यार ऐसा थोड़ा ना करते, बट एट दैट एज यू डोंट थिंक से नहीं नहीं यार मैं कर लूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू डोंट नो कि आपके जो एक्शंस हैं उससे रिजल्ट अच्छा कितना हो सकता है या बुरा कितना हो सकता है, वो एक जवानी का एक्चुअली वो एक पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दैट्स वाई यंग पीपल अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज वो चीज़ कर जाते हैं जो शायद एक सोचने वाला मैच्योर आदमी ना करे, सो आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन ऑब्सेसिव फैन टू बी ऑनेस्ट।
और आपको क्या लगता है कि आपके सबसे ज़्यादा कौन से फैंस हैं, मतलब लड़कियाँ हैं या लड़के हैं?
I think I have more girl fans. They are sweet only, but nobody's tried to become dangerous or they care about me. I know. एक मैंने किस्सा भी कल किसी को बता रहा था, मेरी स्पाइन की सर्जरी होने वाली थी, तो एक लेडी थी आई थिंक साउथ अफ्रीका से थी या फिर मॉरिशस से, तो बार बार उनका फ़ोन, तब मोबाइल्स नहीं थे तो फ़ोन आता था कि मैं उनकी सर्जरी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, तो हम समझे कोई होगा एक्सपर्ट होगा, यू नो ये बहुत नई सर्जरी थी हमारे लिए सबके लिए, सो आई वेंट, तो उन्होंने कहा कि ये सर्जरी मत करो, मैंने ख्वाब में देखा है आप यू ब्लेड टू डेथ ऑन द टेबल, अगर यार ये तो बहुत डर गया, हम जा रहे थे रात को, आई थिंक फिल्म फेयर अवार्ड्स थे, उसके बाद मैं फ्लाई कर रहा था ऑपरेशन के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग, तो कहते नहीं नहीं यू आर गोइंग टू डाई ऑन द टेबल यू विल ब्लीड टू डेथ, तो इतना डर लगने लगा वो, तो और वो करती जा रही थी बार बार, एंड देन जब मैं लंदन पहुंचा तो हमको एक पेपर साइन करना पड़ता है, स्टिल रिमेंबर 56 पेज का पेपर था, और उसमें अबाउट कुछ 90 चीज़ें थी जिस कारणवश ये सर्जरी गलत हो सकती थी, कि फ्रॉम एनेस्थीसिया टू मतलब एक एक ऐसा करके, तो मैं अपनी फ्रेंड थी हमारी पैमेला साथ में बैठी थी, मैं उसको दिखे जा रहा हूँ और मुझे वो याद आ रहा था बार बार, बट आई थिंक शी केप्ट ऑन कॉलिंग, बट आई डोंट नो इफ दैट वाज ऑब्सेशन और हर केयर और व्हाटएवर, बट आई हैव नेवर हैड अ यू नो स्केरी और फिजिकली हार्मफुल एक्सपीरियंस। नाउ
चलिए, अगर हम एक फ़ैन की साइकी जानना चाहें कि वो क्या सोचता है, वो कैसा सोचता है अपने एक्टर के बारे में या अपने आइडल के बारे में, तो वो क्या होगा?
यू नो फैन की साइकी जो इस फिल्म की वजह से नहीं, मुझे खुद दिमाग में जो है, यू कांट टेल देम कि ये करो या वो करो, बिकॉज अगर इस लेवल की फैंडम है या फैनशिप है तो अगर सोच के की तो फिर वो फैन ही नहीं होता, सो आई विल नेवर बी एबल टू टेल अ फैन कि ऐसा मत करो. मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अपने आप को चोटिल मत करो. आई नो लोग टैटू वगैरह करा लेते हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन मुझे याद है डर के वक्त कहीं लखनऊ में या कहीं पे लोगों ने अपने छाती पे ऐसे नाइफ से वो कर लिया. अब मैं फिल्म में असली में नहीं किया था मैंने. सो आई जस्ट वांट टू टेल पीपल कि डोंट हार्म योरसेल्फ.
अच्छा एक बात बताइए, वैसे जब फैंस आते हैं आपके घर के सामने तो वो क्या करते हैं?
अभी लोग आते हैं, चिल्लाते भी हैं, गाली भी देते हैं, डांस भी करते हैं, टी शर्ट भी उतार देते हैं, घर में भी घुस जाते हैं, झगड़ा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं. डोंट रियलाइज कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब यू नो. सो आई कांट स्टॉप देम फ्रॉम दैट. आई थिंक वो उनका हक है, बट आई कैन ओनली से डोंट हर्ट योरसेल्फ, स्पेशली टू गर्ल्स यू नो, कि भीड़ भाड़ के अंदर थोड़ा यार टेक केयर, बिकॉज मुझे बहुत बुरा लगता है सब ऐसा वो धस जाती हैं, दब जाती हैं. एंड सेकेंड पार्ट, वेन यू डिसाइड टू बी अ स्टार और बिकम अ स्टार, वेन यू आर अ पब्लिक फिगर, आई थिंक यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि अब ठीक है मेरी प्राइवेट लाइफ जो है वो इतनी प्राइवेट नहीं रहेगी.
दैट्स ट्रू, आपकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है शाहरुख. इनफैक्ट किसी भी सुपरस्टार की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती है. पर इस फिल्म में जो आपका फैन है मतलब गौरव, वो आपका बेटा भी तो बन सकता था. मतलब आपका बेटा आर्यन वो किरदार निभा सकता था गौरव का. ही इज ऑल्सो वेरी हैंडसम लाइक यू.
आई थिंक उसको इतनी एक्टिंग नहीं आती अभी, टू बी रियली ऑनेस्ट. ये जो गौरव का रोल है इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए. आई एम श्योर बहुत टैलेंटेड लड़के हो सकते हैं, लड़कियाँ हो सकती हैं जो ये रोल प्ले कर सकती हैं. गॉड का टैलेंट हो सकता है, बट आई थिंक इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर समवन विद लैक ऑफ एक्सपीरियंस टू प्ले इट ऑफ लाइक दिस, बिकॉज बहुत सारी क्राफ्ट और टेक्निक भी है इसमें कि कैमरा के साथ कैसा. और डबल रोल करना वैसे ही मतलब मैंने जब पहली बार किया था आई थिंक डुप्लीकेट में, इट इज़ डिफिकल्ट. तो थोड़ा सा फिल्मों का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है.
इस फिल्म में काफ़ी सारी हाइलाइट्स हैं, मतलब एक्शन है और पैशन है, और जो गौरव का लुक है ना जो आपने निभाया है मतलब अमेजिंग. लग ही नहीं रहा कि वो आप हैं. कितना फिजिकली टायरिंग था ये सब आपके लिए करना?
फिजिकली थोड़ा सा बिकॉज मुझे चोट लगी हुई थी थ्रू आउट द फिल्म, तो भागना एक्शन वगैरह डांस करना. बट मनीष बड़े क्लियर थे वॉट ही थिंक्स गौरव शुड बी, तो मैंने एक्चुअली गाइडेंस उनसे लिया. थोड़ा दिल्ली का डायलेक्ट है, लहजा है, वो हमको आता है. बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट यार, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब मैं देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि 1.5 साल पहले शूट किया था, तो जब कंप्लीट देखते हैं तो मुझे खुद याद नहीं है कि वो कैसा किया.
तो ये थे अभिनेता शाहरुख खान संडे दिन भर में.
और अब खेल की खबरें. आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं.
जी संदीप, अगर IPL 9 में आज खेले जाने वाले मुकाबलों की बात की जाए तो थोड़ी देर में बेंगलोर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना दिल्ली डेयर डेविल्स से होगा, जहां दिल्ली के कप्तान ज़हीर खान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. इससे पहले आज जो पहला मुकाबला समाप्त हुआ वो मोहाली में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मुकाबला था, जहां किंग्स इलेवन पंजाब ने पुणे को 6 विकेट से मात दी. ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का मिडास टच अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है. पहले वो मिट्टी को भी सोना कर देते थे, लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है कि सोना भी शायद चांदी में बदल रहा है. आज पुणे की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 152 रन बनाए. फेफ डु प्लेसी ने 67, स्टीवन स्मिथ ने 38 रन बनाए, लेकिन खुद धोनी 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने. वैसे भी वो 18वें ओवर के बाद तो बल्लेबाजी करने मैदान में आए थे. और अगर पंजाब की बात की जाए तो संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन छुपे रुस्तम साबित हुए मोहित शर्मा, जिन्होंने 23 रन देकर 3 विकेट लिए. और उसके बाद पंजाब ने जीत का लक्ष्य 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. जीत के हीरो रहे मुरली विजय और मनन वोहरा, ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन हैं पंजाब के. मुरली विजय ने 53 रन बनाए, मनन वोहरा ने 51 रन बनाए. तो इस तरह से किंग्स इलेवन पंजाब ने भी इस बार इस IPL में अपनी जीत का खाता खोला.
बहुत शुक्रिया आदिश कुमार गुप्त से खेल समाचारों के बाद. कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से.
BBC समाचार. पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के लिए 79.7% वोटिंग हुई. मालदा और बीरभूम में झड़पों की खबरें. शक्तिशाली भूकंप से प्रभावित इक्वाडोर के उत्तरी तटीय इलाकों में राहत कार्य के लिए हजारों सैनिक लगाए गए. कल रात आए भूकंप से 77 लोगों की मौत हो गई थी. जापान के कुमोमोटो शहर में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अमरीका ने राहत भेजी. भूकंप में 41 लोगों की मौत हो गई थी. गुजरात में आरक्षण के लिए लड़ रहे पटेलों के जेल भरो आंदोलन में आज हिंसा. महसाणा में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की खबर. ब्राजील में आज राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ के खिलाफ महाभियोग पर संसद के निचले सदन में वोटिंग होनी है. इसके मद्देनजर विरोध प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए कई शहरों में भारी पुलिस बल तैनात. BBC समाचार.
दिन भर में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मदद कर रहे थे हेमंत कुशवाहा। ठीक डेढ़ घंटे के बाद घटना चक्र में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।